नमस्कार भारत, 20 सितंबर दिन रविवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। शरणार्थियों की समस्या पर यूरोप के देशों की चिंता बढ़ी, क्रोएशिया और हंगरी आमने सामने, ऑस्ट्रिया में कई हजार शरणार्थी और पहुंचे।
Ilyen kormánya van Horvátországnak, amely nyíltan fittyet hány az európai uniós szabályokra, amelynek...
बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, मांझी की पार्टी के दो नेताओं को मिला बीजेपी का टिकट, लेकिन क्या इसको लेकर भविष्य में समस्या तो नहीं होगी?
जब आप एक ही गठबंधन के तहत हैं, तो मुझको नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि जहां पर की दल की कोई संबद्धता या इस तरह की अड़चन कहीं आ रही आएगी।
न्यूज मेकर में चर्चा पहलवान नरसिंह यादव की और सुशील कुमार से उनके एक खास मुकाबले की, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। यूरोप के कुछ देशों में प्रवासियों की मौजूदगी को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। क्रोएशिया का कहना है कि वो इन प्रवासियों को हंगरी भेजता रहेगा। हंगरी ने क्रोएशिया के इस कदम को अपनी संप्रभुता और यूरोपीय संघ के नियमों का उल्लंघन बताया है। क्रोएशिया से आए प्रवासियों को हंगरी ऑस्ट्रिया की ओर भेज रहा है। ऑस्ट्रिया का दावा है कि बीते 24 घंटे में लगभग 10,000 प्रवासी उसके इलाके में दाखिल हुए हैं। वहीं कनाडा की सरकार ने कहा है कि वो सीरिया से आए प्रवासियों को जगह देगी, लेकिन 10,000 से ज़्यादा शरणार्थियों को पनाह नहीं दे पाएगी। क्यूबा की पहली बार यात्रा कर रहे पोप फ्रांसिस राजधानी हवाना पहुंच गए हैं, जहां हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने उनकी अगवानी की है। राष्ट्रपति कास्त्रो ने क्यूबा और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत में मदद के लिए पोप फ्रांसिस का आभार जताया है। इसके जवाब में पोप फ्रांसिस ने क्यूबा और अमरीका से संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया जारी रखने और पूरी दुनिया में मेलजोल का उदाहरण पेश करने के लिए कहा है। पोप फ्रांसिस क्यूबा के बाद अमरीका भी जाएंगे। क्यूबा के लोग पोप की यात्रा से उत्साहित हैं। पोप फ्रांसिस की यात्रा से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे आशा है कि सब कुछ सकारात्मक होगा। क्यूबा की सरकार को आखिर समझ में आ गया है कि ये नफरत और दमन को खत्म करने का वक्त है। क्यूबा के लोग प्रेम और शांति चाहते हैं। क्यूबा के एक स्थानीय व्यक्ति के शब्द आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी कैलिफोर्निया में अधिकारियों का कहना है कि जंगल में दो अलग अलग जगह लगी आग की वजह से 1,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं। कैलिफोर्निया के जंगल में ये आग एक हफ्ते से ज़्यादा दिनों से धधक रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को इलाके से निकाला गया है और कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बराक ओबामा का बचाव करना उनका काम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान तब आया है जब एक समर्थक के बयान को दुरुस्त नहीं करने के लिए रिपब्लिकन साथी उनकी आलोचना कर रहे हैं। न्यू हैम्पशायर में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैली के दौरान उनके एक समर्थक ने कहा था कि बराक ओबामा मुसलमान हैं और अमरीकी भी नहीं हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इस टिप्पणी को हंसकर रफा दफा कर दिया था। इस वजह से उनकी काफ़ी आलोचना हुई है। लंदन में हो रहे रग्बी वर्ल्ड कप में जापान ने बड़ा उलटफेर करते हुए दो बार के विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 32 के मुकाबले 34 पॉइंट से हरा दिया है। इस मैच को औपचारिक मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जापान ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दर्शकों को हैरान कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तारीख 20 सितंबर दिन रविवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह देने को लेकर यूरोपीय देशों का संकट दिनों दिन नया रूप लेता जा रहा है। एक ओर जहां क्रोएशिया और हंगरी के बीच इस संकट को लेकर ठन गई है, वहीं ऑस्ट्रिया का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान उसके यहां करीब 10,000 शरणार्थी पहुंचे हैं। अब कई देशों के सामने ये समस्या ये आ रही है कि वे शरणार्थियों की दिनों दिन बढ़ती संख्या से कैसे निपटें। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुनिए संदीप सोनी से।
यूरोप के कुछ देशों में प्रवासियों की मौजूदगी को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। क्रोएशिया ने कहा है कि वह प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए हंगरी को बाध्य करेगा। प्रधानमंत्री जोरान मिलानोविक ने बयान दिया है कि क्रोएशिया प्रवासियों को हंगरी भेजता रहेगा। इस पर हंगरी ने आपत्ति जताते हुए नाराजगी जाहिर की है। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सियार्टो कह रहे थे, क्रोएशिया की सरकार यूरोपीय संघ के नियमों का सरेआम अपमान कर रही है, जिसकी व्यवस्था एक दिन में धराशायी हो गई और वो प्रवासियों के प्रति ईमानदारी बरतने के बजाय उन्हें सीधे हंगरी भेज रहे हैं। क्रोएशिया पुलिस के घेरे में बिना किसी सूचना के उन्होंने प्रवासियों से भरी ट्रेन हंगरी भेज दी, जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसलिए यहाँ सवाल उठता है कि ये किस तरह की यूरोपीय एकजुटता है। लेकिन क्रोएशिया ने प्रवासियों को एक ऐसी नदी की तरह बताया है जिसे नियंत्रित करना या रोकना मुमकिन नहीं है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जोरान मिलानोविक कह रहे थे, आप लोगों की इस नदी को इस तरह नहीं रोक सकते। इस नदी को वहीं रोकना होगा जहां से इसका उद्गम होता है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि क्रोएशिया यूरोप का शरणार्थी केंद्र नहीं बनेगा। क्रोएशिया का दावा है कि बुधवार से अब तक 20,000 से अधिक प्रवासी उसकी सीमा में दाखिल हो चुके हैं। वहीं हंगरी के अधिकारियों का दावा है कि लगभग 8,000 प्रवासी शुक्रवार को ही हंगरी पहुंच चुके थे। क्रोएशिया ने प्रवासियों को बसों में भरकर हंगरी भेजा, जिन्हें हंगरी ऑस्ट्रिया की तरफ रवाना कर रहा है। ऑस्ट्रिया की पुलिस का कहना है कि 6,700 प्रवासी उसकी सीमा में दाखिल हो चुके हैं। यूरोपीय संघ में प्रवासियों के संकट से निपटने के तौर तरीकों पर पहले ही मतभेद थे और अब क्रोएशिया के रवैये की वजह से असमंजस की स्थिति और गंभीर हो गई है। हंगरी में प्रवासियों पर पुलिस कई बार आंसू गैस के गोले दाग चुकी है। स्लोवेनिया में भी प्रवासियों की पुलिस के साथ झड़प हो चुकी है। ज्यादातर प्रवासी मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों में लगातार चल रहे युद्ध और गरीबी से बचकर भागे हैं और वे जर्मनी जैसे देशों में शरण चाहते हैं।
यूरोप का शरणार्थी संकट, बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी। और अब रुख करते हैं भारत की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने कल रात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने इस बार 14 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पहली सूची 43 उम्मीदवारों की थी और उसमें भी 5 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए गए थे। दूसरी सूची की खासियत यह है कि भाजपा ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं के बेटों को भी टिकट दिया है। साथ ही जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 2 नेताओं को भाजपा का टिकट मिला है। पहले से तय व्यवस्था के तहत मांझी की पार्टी के 5 नेता भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। दूसरी सूची में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिन 2 नेताओं को भाजपा का टिकट मिला है, उनमें से एक हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र, जो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मैंने कल देर रात उनसे फोन पर बात की और पूछा कि ये कैसी व्यवस्था है।
ये जब सीटों की तालमेल की बात हो रही थी आदरणीय जीतन राम मांझी जी की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी से, उसी क्रम में ये बात की सहमति बनी थी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो मांझी जी की पार्टी है उससे 20 लोग लड़ेंगे और मांझी जी जिन 5 व्यक्तियों का नाम देंगे वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच जो सहमति बनी थी उसी आधार पर 5 लोगों का नाम मांझी जी ने रिकमेंड किया था भारतीय जनता पार्टी को।
लेकिन नीतीश जी, ये अजीब बात नहीं है कि पार्टी तो आपके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है लेकिन आप लड़ेंगे सिंबल पर, और चुनाव के बाद की जो संवैधानिक स्थिति होगी उसमें जहां तक मुझे जानकारी है आपकी पार्टी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही कहलाएगी।
नहीं, स्वाभाविक रूप से लेकिन जो बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई थी, आप भी समझ सकते हैं जब आप गठबंधन में होते हैं, अलायंस में होते हैं, तो बहुत तरह से सभी दलों को, क्योंकि सीमित संख्या है और सीमित संख्या में अधिक से अधिक लोग अपने लोग को लड़ाना चाहते हैं, वो बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। और जहां तक जिस संवैधानिक अड़चन की आप बात कर रहे हैं, जब आप एक ही गठबंधन के तहत हैं तो मुझको नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि जहां पर की दल की कोई संबद्धता या इस तरह की अड़चन कहीं आ रही आएगी।
नीतीश जी, अगला सवाल रामविलास जी की पार्टी को लेकर, गठबंधन में जो आपकी पार्टी से मतभेद की खबरें थी और बयानबाजी भी हुई, क्या आपको लग रहा है कि क्या ये गठबंधन में दोनों दल के बीच टकराव किस चीज को लेकर है?
नहीं, ये अब सब पुरानी बात हुई और मुझको लगता है आप इस बात से सहमत होंगे, जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ शुरुआती दौर पर क्षणिक भर में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज को मेरे समझ से अब वर्तमान में ये कहीं अब मायने नहीं रख रही हैं। सारा एनडीए एक है और कहीं भी एनडीए के चारों दल में किसी भी तरह की कोई टकराहट वर्तमान में नहीं है।
नीतीश जी, क्या चारा घोटाले में जब भी लालू प्रसाद जी के साथ आपके पिताजी का नाम होता है तो क्या आता है, तो क्या आपको कभी इसका नुकसान भी होता है?
नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप से आपने ठीक ही कहा, जनता तो केस के डिटेल में तो वो नहीं समझ पा रही है, या डॉक्टर मिश्र का जो कार्यकाल था से 25-30 वर्षों, आज का जनरेशन उसको नहीं जान रहा है ना समझ पा रहा है। तो आज जो रीसेंट मेमोरी है, तो रीसेंट मेमोरी अनफॉर्चुनेटली तो उसी कांड की आती है, और लोग को लगता है कि ठीक है सारे लोग एक ही जैसे रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर मिश्रा में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो भी घटना हुई थी वो कहीं भी एक्शन लेने की स्थिति में नहीं थे। वो नेता विरोधी दल के तौर पर उनकी चिट्ठियां थी, लेकिन दुर्भाग्य है जनप्रतिनिधि तो हजारों लाखों चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन उन चिट्ठियों लिखने के कारण उनको इतनी बड़ी सजा मिली।
तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता नीतीश मिश्रा लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। बिहार चुनाव में जहां बड़ी पार्टियों की धमक है, वहीं रजिस्टर्ड पार्टियां भी अपना दमखम दिखा रही हैं। अजीब अजीब नाम वाली पार्टियों की संख्या हर चुनाव के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि ये पार्टियां कोई कमाल नहीं दिखा पाती, फिर भी ये पूरे जोश के साथ चुनाव में उतरती हैं। पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
25 सालों का धोखा है, बिहार बचालो मौका है, सिटी बचाओ, चोर भगाओ।
पटना की फिजा में गूंजते झांसों, जुमलों और जंगल राज के बीच आपको ये आवाजें भी कभी कभार सुनने को मिल जाती हैं। ये गरीब आदमी पार्टी का प्रचार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम भारती ने इसे अपनी छोटी सी गाड़ी में लगवा रखा है। पार्टी का चुनाव चिन्ह सीटी है। सीटी का मतलब पूछने पर श्याम सीटी बजाते हुए ही उसका जवाब देते हैं।
हमने नाम भी पार्टी का बहुत सोच समझ के रखा है, चुनाव चिन्ह भी बहुत सोच समझ के लिया है। आज के समय में राजनीति इतनी गंदी हो चुकी, किसी भी नेता का नाम या नेता शब्द दिमाग में आते ही ना एक चोर की छवि दिमाग में आती है, और सीटी एक ऐसा चुनाव चिन्ह है। रात में अगर चौकीदार चोरों से रखवाली करता है तो सीटी बजाता है।
बिहार चुनावों में रजिस्टर्ड पार्टियों की दस्तक बढ़ती जा रही है। 1951 में सिर्फ एक रजिस्टर्ड पार्टी थी, जबकि 2010 के चुनावों में 72 पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। अब की बार भारत निर्माण पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच भारत निर्माण पार्टी खुद को कहां देखती है, ये सवाल पूछने पर पार्टी के अध्यक्ष शिव बिहारी सिंघानिया कहते हैं,
देखिए आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो सब हमारे जैसी पार्टी थी वो धीरे धीरे अपना चुनाव लड़ी और आगे बढ़ी, और हम उन लोगों के बीच में आगे ही बढ़ेंगे। आगे इसके बिहार के बाद हम लोग पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ संगठन हमारा बहुत तगड़ा है।
दिलचस्प है कि इन छोटी छोटी पार्टियों के नाम भी अजब गजब हैं। चुनाव मैदान में अब की बार बाप पार्टी है, जिसका दावा है कि विकास के काम में भी वो सबका बाप बनकर दिखलाएगी। चुनाव में सदाबहार पार्टी भी है। पार्टी का नाम सदाबहार क्यों रखा, ये पूछने पर पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव कहते हैं,
हमने न कभी चिंतन किया था, न 32 वो नाम लिखे थे, इसमें एक नाम सिलेक्शन किया कि सदाबहार मेरे जवान सैनिक, सब लोग कहीं नाम बहुत, न तो किसी धर्म किसी भी क्या का इसमें से कोई सुगंध नहीं निकलता है, जिससे कि शांति बैकवर्ड का है, हिंदू का।
इन पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके यहाँ टिकट चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे ही एक शख्स हैं सुरेश चौधरी, पेशे से ज्योतिषी हैं, लेकिन आजकल खुद टिकट पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे पूछने पर कहते हैं कि जनता अपना विकास चाहेगी तो हमें वोट और चुनाव लड़ने के लिए चंदा दोनों देगी।
चुनाव में तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये जो लोग कहते हैं कि पैसे हैं, तो रात दिन वो काला धन इकट्ठा करके कहते हैं कि मैं कहां खपाऊं, इसलिए उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। चुनाव में सच्चाई है कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है। यदि आत्मविश्वास के साथ आम वोटर के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि मैं ही आपका सेवक हूं, इसके लिए मुझे 1 रुपये की आप दान दो, तो स्वच्छा से दे सकते हैं।
आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में ये पार्टियां कोई कमाल नहीं दिखा पाती, लेकिन ना तो इनकी संख्या और ना ही इनके यहां टिकट चाहने वालों की तादाद कम हो रही है। सीटू तिवारी, BBC, पटना।
तो बिहार चुनाव में छोटी पार्टियों का रंग। ये थी पटना से सीटू तिवारी। और अब चर्चा करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के बाद इस पर चर्चा और तेज हो गई है। अब केंद्र सरकार पर भी इससे जुड़े फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। अनुज धर लंबे समय से इस मुद्दे पर शोध कर रहे हैं और उन्होंने हजारों पन्नों के इन दस्तावेजों में से कुछ को देखा है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने उनसे पूछा कि इन दस्तावेजों में क्या कुछ सामने आया है जिससे कुछ नई बात पता चली हो या पुराने अनुमान पुख्ता हुए हों।
देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो बाहर आए हैं वो हजारों की तादाद में है और अभी तो बहुत समय लगेगा उनको सारे को पढ़ने में, लेकिन जो मोटा मोटा लबो लबाव जो मेरे को नजर आ रहा है, मैंने देखा उसमें तीन चार बातें बिल्कुल सीधी सपाट सामने आती है और मुख्यमंत्री जी ने वो ऑलरेडी एक्सेप्ट भी कर ली है। पहली बात तो ये कि आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में ये खबर निकल के आई थी कि कुछ दस्तावेज हैं जो दर्शाते हैं कि नेताजी की फैमिली पे को 21 साल जासूसी हुई थी, तो उसकी डिटेल पुख्ता आ गई है और ज्यादा लोग उसमें ऐड हो गए हैं और INA के लोगों भी जासूसी हुई थी, शरद बोस नेता जी के बड़े भाई हैं उनकी जासूसी हुई, तो वो सबूत उसमें बिल्कुल साफ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पूरा प्रकरण जो है जासूसी का, ये फैमिली पर आधारित नहीं है, ये बेसिकली सुभाष बोस की टो लेने के लिए हुआ है।
तो इन दस्तावेजों के आधार पर कैसे ये कहा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद उनके जीवित होने की जो बात कही जा रही है?
कई इंटेलिजेंस के इंटरसेप्ट है, इन्फॉर्मेशन है उसमें दिखाई जा रही है। उसमें जैसे कि जिक्र आ रहा है कि अमेरिकन खुफिया विभाग से जो खबरें आ रही हैं उसमें विश्वास करते थे कि शायद जिंदा थे, और जो नेताजी के बारे में बोला जाता है कि शायद वो चाइना में हो सकते हैं उसके उनको पीछा चेज किया जा रहा है, तो उसका जो उसको देख के नजर आ रहा है कि कम से कम इंटेलिजेंस विभाग को तो कम से कम ये नहीं था और इन लोगों का कोई मतलब झूठ बोलने का मतलब ही मोटिव नहीं है। और दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली पे जासूसी करना 20-30 साल तक इस पर्पज से जानने के लिए कि वो सुभाष के बारे में क्या जानते हैं, तो ये अपने आप में ही दर्शाता है डायरेक्टली कि ये लोग सब नहीं तो कन्विंस नहीं थे। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक इंटरसेप्टेड नोट है जो नेताजी की वाइफ का एक लेटर है, इन्होंने इंटरसेप्ट किया, उसके मार्जिन पे जो अफसर था खुफिया विभाग का उसने ये नोट लिखा, ये 55 की बात है, और मैंने पूरा नोट देखा, उसमें कहीं कोई अंग्रेजी में मिस्टेक नहीं है, कॉमा भी यहाँ से वहां लोगों ने मिसप्लेस नहीं किया हुआ, और उसमें लिखा है कि ये जो लेटर लिखने वाला नेताजी की पत्नी का है, तो वर्ड यूज करना चाहिए था विडो, लेकिन वो विडो यूज नहीं कर रहे हैं, वो वाइफ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको मालूम था आदमी जिंदा था 55 में, मरने के 10 साल बाद क्यों आप उसको उस आदमी की सो कॉल्ड विधवा को पत्नी बोल रहे हैं।
इन दस्तावेजों में अभी मतलब जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसके बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा और कुछ?
मैं शुरुआत से ये कहता आ रहा हूँ कि बंगाल गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट है ये चिकन फीड है, असली दस्तावेज दिल्ली में है, दिल्ली में लोगों ने कंबार खड़ा कर रखा है, 77 फाइलें IB के पास में है, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास में 41 फाइल्स हैं, विदेश मंत्रालय के पास 27 फाइल्स हैं, उसके अलावा इन्होंने गृह मंत्रालय जो है इंटरनल जो सिक्योरिटी को देखता है उसमें कुछ 60,000 पन्ने बना के रखे हुए, ये लोग पता पिछले 50-60 से मेरे को लगता है ये काम ही कर रहे थे कि सुभाष बोस की गतिविधि में नजर रखें, क्या करें कि पूरा भारत का बहुत बड़ा इन्होंने रिसोर्स जो है इस पर लगा रखा था, तो वो सब जब निकलेगा देश के बाहर तब मेरे को लगता है कि आपको पूरी दुनिया को मालूम चलेगा कि ये भारत के लोग की हमारी जो रूलर थे वो कितने खौफ जताते हैं इस पूरे इशू को लेकर के।
और चलिए अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस आज दिल्ली में किसान रैली का आयोजन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों ने मोदी सरकार को भूमि अध्यादेश वापस लेने पर विवश कर दिया, किसानों को इसकी बधाई देने के लिए ये रैली आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर सरकारी रेडियो के जरिए अपने मन की बात कहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल उनके इस कार्यक्रम का विरोध करते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पाबंदी लगाने से ये कहकर मना कर चुका है कि आयोग इस कार्यक्रम में कही गई बातों को ध्यान से सुनेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 अक्टूबर से शुरू हो रही क्रिकेट सीरीज के लिए बेंगलुरु में आज भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। नेपाल में आज से नया संविधान लागू हो रहा है, हालांकि नए संविधान पर नेपाल में सभी पक्ष सहमत नहीं हैं। इस मुद्दे पर नेपाल में बीते दिनों काफी हिंसा हो चुकी है। ग्रीस में लगभग 1 करोड़ मतदाता आज नई सरकार के लिए मतदान कर रहे हैं। नई सरकार आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस के लिए बेल आउट पैकेज को लागू करेगी। वामपंथी सिरिजा पार्टी को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
और जैसा कि अभी आपने सुना, नेपाल में आज से नया संविधान लागू करने की तैयारी हो रही है। लंबी मशक्कत के बाद सरकार ने ये संविधान तैयार किया है, हालांकि इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलनों का दौर जारी है। मैंने अब से कुछ देर पहले BBC नेपाली सेवा के शरद केसी से इस बारे में और जानकारी मांगी।
देखिए, संविधान जारी होने के एक दिन पहले कल 3 प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले और एकीकृत नेकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं ने सभी आंदोलन पक्ष को वार्ता में आने के लिए आमंत्रण किया था, लेकिन जो आंदोलन में है वो सभी दलों ने उनकी अपील को ठुकरा दिया है। इसलिए लगता है अभी तक की सिनारियो देखेंगे कई जगह इसका स्वागत होगा और कई जगह इसका विरोध होगा।
लेकिन बताइए इसका रास्ता क्या है, क्या मतलब ये माना जाए कि सरकार किसी भी स्थिति में आज से संविधान लागू करेगी ही?
जी हाँ, अब एक ही रास्ता बाकी बचा है। ये जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां जिसमें संविधान सभा में अधिकतर सभासद हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा संख्या में सभासद हैं, तकरीबन 90%, इसलिए वो संविधान जारी करने में अड़िग हैं। और अभी तक का सिनारियो में कहा जा सकता है वो संविधान जारी करेंगे, लेकिन वो उन्होंने आंदोलनरत पक्ष के मांग को संबोधन करने के लिए आगे भी वार्ता जारी रहेगी कहकर प्रतिबद्धता जताई है।
लेकिन शरद ये बताइए कि क्या लग रहा है आंदोलनकारियों का अगला कदम क्या होगा? आप कह रहे हैं कि वो बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरफ उनका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, तो देश में जो अस्थिरता का माहौल है वो कैसे कम होगा?
फिलहाल तो अस्थिरता कम होने की कोई संकेत नहीं मिली है, लेकिन इस मामले को राष्ट्रीय रूप में सिर्फ नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी बहुत गंभीर रूप से देखा जा रहा है, खास करके दक्षिण चीन की जो भारत है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश सचिव एस जयकिशन को 24 घंटे के लिए विशेष दूत बनाकर भेजा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत ज्यादा है दोनों तरफ, खास करके उसमें भी सत्ताधारी पार्टी जो संविधान जारी करने में लगे हुए हैं और उनके गठबंधन को।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, संदीप सोनी के साथ।
पंकज जी, आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले ही भारत के विदेश सचिव नेपाल गए थे। इस बारे में द हिंदू की खबर कहती है कि नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि नए संविधान पर भारत की जो चिंताएं हैं उन्हें नेपाल ने अनसुना कर दिया है और विदेश सचिव को एक तरह से खाली हाथ भारत लौटा दिया है। हिंदू ने ही अपनी खास खबर बताते हुए एक खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने एक भरोसेमंद सहयोगी को दिल्ली भेजा था ये पता लगाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा में देरी आखिर क्यों हो रही है।
कुछ पता भी चला?
इसके बारे में डिटेल्स नहीं छापे हैं अखबार ने। और गुजरात में आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदारों का प्रदर्शन, ये इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर है। खबर में लिखा है कि प्रदर्शनकारियों के नेता हार्दिक पटेल को सूरत में गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया, और इस दौरान गुजरात के सभी प्रमुख शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया।
पिछली बार भी ऐसा हुआ था।
मैं किसी अखबार में देख रहा था इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया कि मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं हिरासत में चली गईं, हार्दिक पटेल रिहा हो गए। और खबर के साथ अहमदाबाद के बापू नगर इलाके की तस्वीर है जिसमें युवा प्रदर्शनकारी, इसमें कम उम्र के बच्चे भी दिख रहे हैं, पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। अगला अखबार दैनिक जागरण, जिसकी पहली खबर ये कहती है कि पंजाब में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड MSG 2 नहीं दिखाने से काफ़ी बवाल हुआ है, जिसकी वजह से 16 ट्रेनें रद्द हुईं, हजारों यात्री बीच में फंसे, तनाव के हालात पैदा हुए, तो हाई अलर्ट घोषित किया गया और आदिवासी विरोधी कथित संवाद के कारण छत्तीसगढ़ और झारखंड में फिल्म दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण की चुनावी रैली में राहुल ने मोदी पर साधा निशाना, हिंदुस्तान की पहली खबर है। जनसत्ता ने लिखा है कि चुनावी रैली में लालू नीतीश का जिक्र करना भूल गए राहुल गांधी। और बिहार में महागठबंधन की सीटों के ऐलान पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है आरजेडी और जेडीयू को 101 का शगुन।
अब ये शगुन चुनाव में कितना शगुन शुभ होगा साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। और अब चर्चा कर लेते हैं न्यूज मेकर की। पिछले दिनों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही नरसिंह यादव ने रियो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। इसके बावजूद अभी ये तय नहीं है कि वो रियो जाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके वजन वर्ग में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार भी हैं। इस हफ्ते के न्यूज मेकर में इसी मुद्दे पर और नरसिंह यादव की कामयाबी पर राखी शर्मा की रिपोर्ट।
कुश्ती के अखाड़े के भीतर तो संग्राम होता ही आया है, लेकिन भारतीय कुश्ती में अखाड़े के बाहर इन दिनों एक नया संग्राम चल रहा है। लास वेगस में हुई विश्व चैंपियनशिप में नरसिंह यादव ने फ्रांस के खिलाड़ी को चित कर कांस्य पदक जीता और इसके साथ ही 74 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया। लेकिन इस जीत ने भारत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल है कि ओलंपिक के लिए 74 किलो वर्ग में कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ी नरसिंह जाएंगे या उसी कैटेगरी में हिस्सा लेने वाले दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार।
India in blue, Sushil Kumar, Commonwealth champion from 2010, and a quick takedown.
नियमों के मुताबिक ये कोटा खिलाड़ी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि देश को दिया जाता है। नरसिंह कहते हैं कि कोटा उन्होंने जीता है तो रियो ओलंपिक जाने का हक उन्हें मिलना चाहिए।
बट मतलब कैसा है कि जो खिलाड़ी वहाँ लड़ता है और लड़के वहाँ पे जीतता है और अपने देश के लिए क्वालिफाई करता है, मेडल जीतता है, तो उसका हक बनता है और उसी को जाना चाहिए ओलंपिक में, ऐसा मेरे ख्याल से ठीक रहता है।
नरसिंह का कोटा जीतना जिस तरह झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सुशील भारत की गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद है। 2008 ओलंपिक्स में जीते कांस्य को सुशील ने 2012 में रजत में तब्दील कर दिया। 2016 ओलंपिक्स के लिए हर कोई सुशील से उम्मीदें लगाए बैठा है कि वो रजत को इस बार गोल्ड में बदलेंगे। सुशील के कोच महाबली सतपाल की राय भी अलग नहीं है।
सुशील ही ज्यादा दावेदार है। सुशील का तो जो परफॉर्मेंस भी है और उसने पहले एक बार नरसिंह को हराया भी है, तो नरसिंह भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नरसिंह है, लेकिन सुशील तो बेजोड़ है।
रियो के लिए भेजा किसे जाएगा, इसे लेकर सबसे बड़ा धर्म संकट भारतीय कुश्ती संघ के सामने है। आखिर चयन उन्हें ही करना है। भारतीय कुश्ती संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुलदीप सिंह राणा कह रहे हैं कि किसी भी पहलवान के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा।
हाँ, ये है कि हम न्याय नहीं किसी के साथ भी करेंगे, ना सुशील के साथ। सुशील ने देश का जो कुश्ती में एक नया इतिहास रच दिया था और वो है, उसको भी नहीं डिनाई करेंगे तो, और इसको भी नहीं। ये है तो अभी तो बैठे हैं, सोचेंगे, अभी मीटिंग करेंगे कि उसके बाद कैसे करेंगे, इसको अच्छी तरह डील किया जाएगा, ऐसा नहीं है, देश की बात है।
नरसिंह यादव या सुशील कुमार, रियो जाने का मौका किसे मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस सवाल ने आने वाले काफी दिनों के लिए भारतीय कुश्ती संघ की नींद जरूर उड़ा दी है। दिल्ली से राखी शर्मा की रिपोर्ट।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दिल्ली के आरके खन्ना स्टेडियम में खेले जा रहे डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले के दूसरे दिन कल मेजबान भारत को तब बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा जब युगल मुकाबले में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी अपनी विरोधी चेक जोड़ी से आसानी से हार गई। चेक गणराज्य के रॉडेक स्टेपनिक और एडम पावलसेक ने दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना को 2 घंटे 10 मिनट तक चले मुकाबलों में 7-5, 6-2, 6-2 से मात दी। पहले सेट में जरूर चेक खिलाड़ी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई दिए, लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में वो पूरी लय में दिखे। इस जीत के साथ ही अब चेक गणराज्य को इस मुकाबले में 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो गई है। अब चेक गणराज्य को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए आज होने वाले 2 उलट-एकल मैचों में से सिर्फ एक को अपने नाम करने की जरूरत होगी। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर एक बड़ा उलटफेर हुआ और भारत के अजय जयराम कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में कल उन्होंने चीन ताइपे के चौ तियेन चेन को मात दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी क्रिकेट सीरीज के लिए आज चयनकर्ता भारत की 2020 और एक दिवसीय टीम का चयन करेंगे।
बीबीसी समाचार। यूरोप के कुछ देशों में प्रवासियों की मौजूदगी को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। क्रोएशिया का कहना है कि वो इन प्रवासियों को हंगरी भेजता रहेगा। क्यूबा की पहली बार यात्रा कर रहे पोप फ्रांसिस राजधानी हवाना पहुंच गए हैं, जहां हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति राहुल कास्त्रो ने उनकी अगवानी की है। उत्तरी कैलिफोर्निया में अधिकारियों का कहना है कि जंगल में 2 अलग-अलग जगह लगी आग की वजह से 1,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। लंदन में हो रहे रग्बी वर्ल्ड कप में जापान ने बड़ा उलटफेर करते हुए 2 बार के विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 32 के मुकाबले 34 पॉइंट से हरा दिया है। ब्रितानी उपन्यासकार जैकी कॉलिंस का निधन हो गया है, वे 77 वर्ष की थीं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बराक ओबामा का बचाव करना उनका काम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान तब आया है जब एक समर्थक के बयान को दुरुस्त नहीं करने के लिए रिपब्लिकन साथी उनकी कटु आलोचना कर रहे हैं। पीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी को संदीप सोनी के साथ अनुमति दीजिए। 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।